ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಪ್ ಸಭೀ ಕಾ ಇಸ್ ಅಗಲೇ ಸತ್ರ ಮೇ ಜೋ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ ಟಾಕ್ ಶೋ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಜರಿಯೆ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಲೋಗೋ ಸೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಹಮ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೇ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಹಮ್ ಕಾಫಿ ದೇರ್ ಸೇ ಬೈಠೇ ಹೈ ತೋ ಥೋಡಾ ಸಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕರ್ಲೇ ಪಹಲೆ ಥೋಡಿ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸೇ ಶುರು ಕರ್ತೇ ಹೈ ಸಭಿ ಸೀದೆ ಹೋಕೆ ಬೈಠ ಜಾಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಕಾ ಸೀಧಾ ರಹೇ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ಹಮ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಯಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾ ಫೋಕಸ್ ಕೋ ರಿಗೇನ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಸೇ ಹಮಾರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೀಜೇ ಭೀ ಸಹಿ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಸಬ್ಸೇ ಪಹಲೆ ಏಕ್ ಗಹರಿ ಲಂಬಿ ಸಾಂಸ್ ಲೇ ಔರ್ ಫಿರ್ ಉಸ್ ಸಾಂಸ್ ಕೋ ರೋಕ್ ಕೆ ರಖತೇ ಹೈ ಫಿರ್ ಧೀರೆ ಸೇ ಓಂ ಕಿ ಧ್ವನಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉಸ್ ಶ್ವಾಸ್ ಕೋ ಬಾಹರ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಠೀಕ್ ಹೈ ತೀನ್ ಬಾರ್ ಯೆ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ ಗಹರಿ ಲಂಬಿ ಸಾಂಸ್ ಲೇ प्रभाग है उसकी अध्यक्षा राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें और मंच को अलंकृत करें. साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी को. कोकिला मठ भुवनेश्वर से हमारे बीच स्वामी जी पधारे हैं. मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप पधारें और मंच को अलंकृत करें. मैं साथ में मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं ब्रह्म कुमार रामनाथ भाई जी को जो मुख्यालय संयोजक हैं धार्मिक प्रभाग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का कि वो भी मंच पर सादर पधारे. पूज्य स्वामी जी हमारे बीच मंच पर पहुंचे हैं. करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं. साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से हमारे बीच पधारे हैं. आपसे भी अनुरोध है स्वामी जी कि आप मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं. और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं आचार्य श्री परमानंद जी महाराज कटनी से हमारे बीच पधारे हैं कि महाराज आप भी मंच पर पधारें और कृपया मंच को शोभायमान करें. मैं साथ ही मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्री अमित मिश्रा जी वैदिक गुरुकुल दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं. मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं श्रीमान अमित मिश्रा जी कि आप भी मंच पर पधारें और मंच को शोभायमान करें. मैं आदरणीय रामनाथ भाई जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पर पधारें और साथ साथ हमारे बीच कुछ ही मिनटों में आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी भी विराजमान होंगे। हर कार्यक्रम की शुरुआत में ये भारत की परंपरा रही है कि हम या तो दीप प्रज्वलन करते हैं या किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में हम शब्द का उपयोग करते हैं कि हम श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो हम उस परम सत्ता को, उस परम शक्ति को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं, उस डिवाइन प्रेजेंस को इन्वोक करते हैं। हमारे बीच रामनाथ भाई जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। आइए अब हम इस पैनल की शुरुआत से पूर्व उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा की स्मृति में, उस परमात्मा स्मृति के साथ दो मिनट उस प्रभु को हमारे बीच आमंत्रित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पर ओम शांति बोल रहा हूं, मगर सभा में हम सभी इतने सारे बैठे हैं, तो अगर आप सभी ओम शांति में साथ देंगे तो ये ओम शांति चारों ओर गूंज सकती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोरमा दीदी जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी करतल ध्वनि से हम स्वागत कहते हैं। जैसे गीत में भी हमने ये शब्द सुना कि ये घड़ी लौट ना आए, समय की बलिहारी बहुत ही ज्यादा गाई गई है, बहुत सारे चीजें समय के बारे में कही गई है। एक बहुत ही प्राचीन उक्ति जो बहुत प्रचलित है वो ये है कि जब समय आता है तब ही सारी चीजें होती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तब भी हम कह देते हैं कालाय तस्मै नमः। आखिर ये समय क्या है, समय की पुकार क्या है, वर्तमान समय क्या कहता है, ये आज की चर्चा का विषय है। मंच पर हमारे बीच विशिष्ट महान विभूतियां बैठी हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए अनुरोध करूंगा कि मंचस्थ हमारे सभी विभूतियों का वो बैज से और गुलदस्ते से स्वागत करें और सम्मान करें। सर्वप्रथम हमारे बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, कोकिला मठ भुवनेश्वर से हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि स्वामी जी का गुलदस्ते एवं बैज से स्वागत करें। भारत की ये स्वागत की परंपराएं अनूठी हैं। कई दिनों से ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी का स्वागत हो रहा है। मंच पर इन विभूतियों का हम पुष्पों से, तिलक से, बैज से स्वागत जरूर कर रहे हैं, मगर अरावली की ये सुंदर तपोभूमि, यहाँ की वन संपदा, ज्ञान सरोवर की पुष्प वाटिका आप सभी का स्वागत कर ही रही है। जैसे स्वागत की श्रृंखला में हमारे बीच मंच के अतिथियों का स्वागत हो रहा है, तो हम सभी भी करतल ध्वनि से स्वागत की परंपरा में साथ देंगे। हमारे साथ ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, मुख्यालय संयोजक धार्मिक प्रभाग राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, इनका भी स्वागत पहने कर रही हैं। इस कार्यक्रम का जितना लोग यहां ज्ञान सरोवर में बैठकर आप लाभ ले रहे हैं, इससे भी कई गुना अधिक लोग ब्रह्मा कुमारी के टीवी चैनल्स पर, साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, यूट्यूब पर एवं फेसबुक पर, ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं और वो भी इन कार्यक्रमों का अवलोकन कर रहे हैं। हमारे साथ मंच पर महामंडलेश्वर निर्मला सोनी जी महाराज भी विराजमान हैं, इनका भी करतल ध्वनि से हम स्वागत चाहेंगे। और साथ ही मंच पर महामंडलेश्वर श्री जगदीश वेदी जी महाराज भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत चाहेंगे। बहने आदरणीय मनोरमा दीदी जी का स्वागत कर रही हैं पुष्पगुच्छों से एवं तिलक पैच से, उनका भी स्वागत है। स्वागत की ये घड़ियां ये भी याद दिलाती हैं कि हृदय में हम सभी आपका सम्मान करते हैं। हालांकि सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी स्वजनों का स्वागत और सम्मान तो है ही, मगर मंच की शोभा इस बात को दर्शाती है कि हम आपके जरिए इनका और इनके जरिए आपका, सभी का स्वागत और सम्मान चाहते हैं। तिलक दे रही हैं बहनें महामंडलेश्वर निर्मला सोनी जी महाराज को, ये आत्मस्मृति का तिलक भारत की सनातन संस्कृति को पुनः याद दिलाते हुए कि हमारी स्वस्थिति क्या है, हमारी स्वयं की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों का। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस टॉक शो की अगवानी करना चाहता हूं। मंच पर जो हमारे महानुभाव विराजमान हैं, उन सभी से ये प्रश्न पूछने का मैं छोटा सा साहस करना चाहूंगा। वर्तमान समय को जब हम देखते हैं तो कई सारे लोगों के मन में कई प्रश्न उठते हैं। धार्मिक जगत की ओर मनुष्य हमेशा ही एक उम्मीद भरी निगाह से देखता रहा है, खासकर ऐसे समय पर जब समय मुश्किल घड़ियों का हो, ऐसा समय रहा हो जब सब कुछ सही नहीं चल रहा हो, ऐसा समय चल रहा हो जब विपदाएं हो, मनुष्य परेशानियों का सामना कर रहा हो, तो स्वाभाविक रीति से लोग धर्म की ओर मुंह करते हैं, प्रयास करते हैं कि यहां से हमें उत्तर मिले, यहां से हमारी समस्याओं का हल मिले। तो आज के वर्तमान समय को देखकर आप लोगों को क्या लगता है? मैं समझता हूं बड़ा विषय है। इस पैनल के ओपनिंग थॉट्स में मैं चाहूंगा कि सभी अपने विचारों को ओपन करने के लिए दो दो मिनट में आपके हिसाब से समय क्या कह रहा है, आप समय को जो देख रहे हैं तो आपके मन में क्या उद्गार निकलते हैं, क्या आपको नजर आता है, वो आप प्रस्तुत करें। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा आचार्य मंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज से कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें।
ओम शांति। सभी मंच पर मोहन भवों की आदर करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, भाई जी ने जो बात रखे तो एक से राजयोगिनी जो इसी सत्र का जो मेन है अध्यक्षा मनोरमा दीदी जी और रामनाथ भैया जो मुख्यालय के संयोजक जो है ये सबको बुलाए। मैंने अभी देख रहे यहाँ के इतने भाइयों ने जितने कमा सभी एक से बढ़कर एक, कोई कमी नहीं है किससे, सभी के अंदर में कुछ ज्ञान है। ये बोला नहीं जाता है कि उनके पास कुछ नहीं है, छोटे से बड़े तक सबके पास कुछ है। तो ये विषय जब रखे, मैं इसी के ऊपर आता हूँ। कई महानुभव महामंडलेश्वर जी महाराज जी है, सभी बैठे है। तो अभी जो विषय है ये चिंतन की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं हम भी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। सारा विश्व का जब हम सूची किया 127 परंपरा है, इसमें राजयोग भी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी। तो 127 चार वैष्णव 10 दशनामी सन्यासी, ये ऐसे नहीं है, ये सारे मिला के हमने इसे सूची बनवाया। 127 परंपरा जो सारा विश्व में धार्मिक पथ पर चल रही है, लेकिन अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। नहीं कहता हूं कि नहीं कर रहे, लेकिन वो आम स्तर पर नहीं आते हैं। सोच की बात है, कई जगह में जगह जगह में आपस में झगड़ लग जाते हैं, मठ में भी झगड़ लग जाते हैं, आश्रम में भी झगड़ लग जाते हैं, अखड़ा में झगड़ लग जाते हैं। तो इससे निपटने के लिए महाराज जो परिस्थिति है उससे आगे और उससे भी अलावा कुछ संगठन है जो इसका नाम नहीं है धार्मिक प्रबंधन में, जो धार्मिक धार प्रभाव है उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे। मैं भी चाहता हूं कम से कम महात्माओं से मैं भी मेरा निवेदन है अपने मठ के अंदर ना रहे, अपने आश्रम के अंदर ना रहे, अभी एक कदम बाहर आए, बाहर की दुनिया को थोड़ा महसूस करे। हम एक जगह की उदाहरण देता हूं, मैंने गेट बैठा था मंच पर, आरती होते लगा था, आरती के समय में दिखा इतने जो बैठे थे सामने, नीचे भी कोई कुर्सी में बैठे थे, उनके अंदर में जो भाव था अलग सी भाव था देखने के महसूस करने का, लेकिन बाकी कुछ ऐसे है जो चारों ओर से घेरा था जो समझ नहीं पा रहे, जैसे किसी परिस्थिति को सृष्टि कर दिए। इसी हाल से कैसे बचे, और एक परिस्थिति है जैसे उनको संस्कार ही नहीं, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे बात करना। हमको गांव को जाना, एक व्यक्ति के पास जाना, हम गांव जाना और एक व्यक्ति के पास भी जाना, व्यक्ति के मनोभाव को समझना। तो यही बात था, ये जो तीन दिन में चर्चा हो रहे है तो यही बात हो रहा है, मैंने सुन रहा है, लेकिन हमने अपने अपने तरफ से अपने अपने ढंग से कर रहे। तो मैं ये यहां बैठकर नहीं बोल रहे कि राजयोग जो सिखा रहे ब्रह्म कुमारी भाई हो भैया उन्होंने, तो उनकी तारीफ कर रहे, नहीं कर रहे सचमुच, लेकिन ये बात नहीं कर रहे। उनके अभी जो प्रश्न उठ रहे, सवाल उठ रहे कि अभी हम जो परिस्थितियां हैं, हिंसा कहां से पैदा होती है, झगड़े कहां से पैदा होती है, तो वही पहले जो इससे पहले जो सत्र था नारायण भैया ने ब्रह्म कुमार नारायण भैया ने जो बात रखे एकदम अनमोल बात रखे। उससे पहले भी रामनाथ भैया में कई भी दीदियों ने भी कई दीदियों ने आते हैं अच्छी बात रखे। सवेरे परमात्मा के बारे में तो उषा दीदी ने अच्छी बात रखी, मैंने सुना। तो कहने के बाद जो तनाव को कैसे मिटा जाए, सारे तो अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन उससे निपटने का रास्ता है मन बुद्धि और चित्त। इसको मन बुद्धि चित्त को जो से हम षड़ रूपी बोलते हैं, ये तो आएंगे, राक्षस है ये प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य तो आएंगे, आग बंद करने से आएंगे, लेकिन हम आग बंद करने से किसी सोच में पहले जो स्वयं को पहचानना और परमात्मा को पहचानना, ये ही बात है मेरा, जो स्वयं को पहचानना और परमात्मा को पहचानना जब बात आती है, नहीं तो ऐसे आग बंद करने से तो सड़ रूपये आ जाएंगे, ये राक्षस में हमको खा जाएंगे, सभी खा लेता, इसीलिए तो झगड़ लगता है, इसीलिए तो अशांत है।
मैं समझता हूँ स्वामी जी, आपने समय में आप क्या देख रहे हैं वो भी आपने बता दिया, और साथ ही ये भी बता दिया कि इसका उत्तर क्या है। मैं इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगा, उससे पूर्व मैं मनोरमा दीदी की और यही बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप जब समय को देखते हैं, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, क्या नजर आता है? आप आध्यात्म के क्षेत्र से कई दशकों से जुड़ी हुई हैं, आपने आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के जगत में भी बहुत सारी चीजों को होते हुए परिवर्तन को देखा है, संसार में भी चीजों को बदलते हुए देखा है, वर्तमान समय क्या चीज आपको नजर आती है, समय की पुकार क्या है आपके लिए?
ओम शांति। आदरणीय मंच और सन्मुख उपस्थित हमारे आचार्य प्रवर, गुरुजन, संतगण एवं सभा में उपस्थित भाई बहने, भाई जी ने, श्री निधि जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। कालचक्र की गति कभी रुकती नहीं, और यह कालचक्र अनवरत गति से गतिशील है। मेरी समझ से समय सतयुग भी था अति सुंदर, समय त्रेता का भी था, समय द्वापर का भी, समय आज कलयुग का भी, और ये घूमते घूमते कालचक्र अपनी अंतिम परिधि माना कलयुग को पूरा करके पुनः सतयुग में प्रवेश करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे घड़ी की सुई चलती है 12 से पुनः 12 पे फिर 1 पे आती है, तो वैसे भी पानी का बहाव देखिए, ऊपर से चलता है, नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर भाप बन के जाता है, फिर नीचे आता है, तो हम घूम रहे हैं समय के साथ साथ। हम कहते हैं कलयुग का अंतिम समय। अब अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कलयुग का अंतिम समय, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे प्रकृति का पराभव हो रहा है, राजनीति की बात करें तो सिद्धांत विहीन हो गई है, विज्ञान जो कभी मनुष्य की सुविधाओं के लिए था वो आज सुविधाएं नहीं दे रहा, वो मानवता विरोधी चीजें बन रही हैं, उसमें इतना कुछ बन रहा है कि कब कहां कुछ होने लग जाए। हमारे पड़ोस में ही हमारे माननीय महामंडलेश्वर बैठे हुए और मैं समझती हूँ वो भी सुनते होंगे, बहुत जिक्र हो रहा है भविष्य मालिका हमारे उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी धाम से, और उसमें बड़ी भयावह घोषणाएं हो रही हैं आने वाला समय कितना भीषण होगा। तो राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, युद्ध होगा कभी, और आकाशीय युद्ध होगा तो कोई छतरी नहीं बनी कि इन परमाणुओं के विस्फोट के बाद हम लगा लेंगे हमारी मानवता सुरक्षित रहेगा, आज तक नहीं बनी, तो वो सब होगा नहीं, हो रहा है, कई देश आपस में टकरा ही रहे हैं, आगे भी भविष्य में घोषणाएं हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें धर्म सत्ता, तो जिसकी ओर बड़ी आशा से इंसान देखता है वही एक रास्ता अंततोगत्वा नजर आता है कि हमारे गुरुजन, हमारे ये रहनुमा हमें बचा लेंगे, हमें कुछ ऐसा रास्ता अंधकार में दिखा देंगे। तो मैं समझती हूँ कि भगवान ने भी यही कहा है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा, परिवर्तन करूंगा। तो अभी जो समय है, अगर हम नहीं बदले तो ये संसार भी नहीं बदलेगा, हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और नीचे जा ही रहे हैं, हमें ऊपर जाने के लिए रास्ते खोजने होंगे। इस तमस से निकलने के लिए, सतयुग की ओर जाने के लिए कोई प्रकाश, तो जगत नियंता वो प्रकाश देगा। अब देगा तो माध्यम हमारे इन सबको ही बनाएगा, जैसे भगवान शिव ने, हम कहते हैं पिताश्री जी को माध्यम बनाया और सत्व प्रधान सृष्टि की रचना का कार्यक्रम शुरू किया, जिसे हम संगम युग मानते हैं। तो वर्तमान समय जो बन गया वो पहुंच गया, जो नहीं बनेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, हमारे संतों ने उस दिन कहा था, तो जब हम धारणाओं में रहेंगे तो हम बच पाएंगे, जब हम सब संगठन में रहेंगे तो बच पाएंगे, तन्हाई में कहीं कोई अकेला नहीं बच पाएगा। समय वो आ गया है कि हम अपनी मौलिकता में आ जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। तो सतयुग सृष्टि का जो निर्माण हो रहा है, आने वाले युग का जो आगमन है, जिसकी भनक कहीं सुनाई दे रही हो तो वहां तक पहुंच सकते हैं। हम तमस को देख रहे हैं, प्रकाश क्यों नहीं देख रहे हैं? दोनों कार्य साथ साथ।
ये प्राचीन प्रार्थना है कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, मांग ही ये करते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, और ये आशा की किरण है कि अगर हम प्रकाश की ओर मुख को करें, देखना शुरू करें, तो शायद अंधेरे के बाहर भी एक प्रकाश की वो किरण आ रही है, जो वो आशा की किरण जगा रही है, वो उम्मीद भी दिखा रही है। अब मैं अनुरोध करता हूं महामंडलेश्वर कमल किशोर जी से कि स्वामी जी, आप जब समय को देखते हैं, आदरणीय दीदी जी ने कहा, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने ये बात कही, आपकी नजर में क्या नजर आता है, क्या आप देखते हैं, विश्व में क्या हो रहा है?
सर्वप्रथम तो मैं मंच पर आसीन धार्मिक प्रभाग के प्रमुख आदरणीय भाई रामनाथ जी और साथ ही साथ मनोरमा दीदी जी, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमें ऐसे अवसर को दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। वर्तमान समय बहुत ही खराब चल रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं देशों में, लड़ाइयां हो रही हैं घरों में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर और साथ ही साथ सीमाओं के नाम पर। अगर आप पूछने जाएं कि ये लड़ाइयां क्यों लड़ रहे हो, तो जवाब मिलता है कि हम चाहते हैं शांति और इस शांति के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई से शांति आती है? नहीं आती है। युद्ध से शांति आती है? नहीं आती। श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, दिवस रात दुई दाई दाया खेला सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी केरे डेगे दूर। दिन और रात के बीच में हम लोग खेल रहे हैं, यानी अंधकार और प्रकाश के बीच खेल रहे हैं, तमस और सत्व के बीच खेल रहे हैं। फिर कहते हैं, जिन्हीं नाम के आया गए मशक्कत काल, यानी सतगुरु, वो हमें क्या देता है? हमें रोशनी देता है, हमें प्रकाश देता है, हमारे मन की चित्त की वृत्तियों को एक हमें नियंत्रण में लाने का साधन बताता है, वो सतगुरु बताता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सौ साखी में लिखा है और उसकी गणना जब हमने की तो पाया कि 2046 में बहुत जबरदस्त विनाश हो जाएगा और वो विनाश हो रहा है। हम देख रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, करने का प्रयास कर रहे हैं तो सिर्फ केवल एक ही संस्था हमें दिखती है, वो है ब्रह्मा कुमारी के भाई और बहन राजयोगी। राजयोगिनी और राजयोगी जब हमें कुछ बताते हैं तो वो हमें प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, कहानियां नहीं सुनाते ना थ्योरी बताते हैं। और जब कोई प्रैक्टिकल बताता है और हम अपनी जिंदगी में उसे उतार लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज भी हमारे भाई नारायण जी जब यहां बैठे थे तो वो बात कर रहे थे कि धीरे धीरे हम अपने विचारों को, थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, 20 से 40 पे ना ले जाके 20 से 18, 16, 12, 10, 8, 6, 4 तक ला सकते हैं। मैंने अभी एक किताब पढ़ी है, पॉजिटिव हेल्थ, यहां से 500 प्रतियां भी मंगाई थी, बांटी भी हैं। जब उसको किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें पाया कि दादी जानकी जी जो 104 वर्ष करके पूरे गई हैं, 45 साल पहले 1978 में 40 देशों के साइंटिस्ट अमेरिका में इकट्ठे हुए, उन्होंने उनका जब ब्रेन का ग्राफ लिया तो उस ग्राफ में पाया कि वो शून्य है, यानी कि जिस तरह से एक डेड बॉडी का ग्राफ होता है वैसा है, उनमें कोई विचार नहीं था। और तब उन्हें ये खिताब दिया गया, ये कहा गया कि सबसे पावरफुल माइंड की लेडी दादी को खिताब दिया गया। कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं, और ऐसा कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में उन्हें नहीं मिला। लेकिन ऐसा संभव है, जैसे कहते हैं एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लायदी बाण। एका माई यानी एक शक्ति, वो कौन सी शक्ति? परमात्मा शिव की शक्ति। वो शक्ति तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लायदी बाण, यानी एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश। और इसीलिए परमात्मा शिव ने चुना, तो यहां नारियों को ही चुना, मातृशक्ति को चुना, स्त्री शक्ति को चुना, ताकि वो समक्ष प्रमाण दे सके। और दादी ने जो प्रमाण दिया, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। समय की पुकार यही कहती है कि अब हमें सभी को, जैसे रामनाथ भाई जी ने भी बताया था, मनोरमा दीदी जी ने भी बताया था हमें, कि हमें अपने आप को जानना होगा। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कहां से आया हूं, ये सब कुछ जानने के बाद आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा नहीं बचती है। तभी हम स्वयं परिवर्तन के बाद ही विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक हो गया है। समय की पुकार ये है कि विश्व के परिवर्तन के लिए सभी लोग जुड़ें, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ें और अपने आप को स्वयं परिवर्तन में बदलें, अपने आप को जानें। धन्यवाद।
बहुत ही खूबसूरत बात है। आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी ने कहा कि परिस्थितियां बाहर तो विपरीत नजर आती हैं, मगर परिवर्तन अंदर की ओर चाहिए। स्व का परिवर्तन चाहिए, वो स्व की पहचान चाहिए। आज जब चीजें विपरीत नजर आती हैं तो स्वाभाविक रीति से हम मान लेते हैं कि मुझे गुस्सा उसकी वजह से आता है, सामने वाला मुझे गुस्सा दिलाता है। स्वामी जी ने यह भी बात कही कि युद्ध से हम शांति चाहते हैं कि हाँ हम युद्ध लड़ लेंगे उससे शांति हो जाएगी, मगर यह संभव नहीं है। और घर में भी लड़ाई झगड़े शायद हम इसीलिए करते हैं कि मेरी बात सिद्ध हो जाएगी तो शांति हो जाएगी, पर यह घर घर की बात नजर आती है कि हम अपने को सिद्ध करने की, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए ये जो कठोर प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को न बदलकर सामने वाले को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो और ही ज्यादा हमें कठिनाइयों में डालता है। महान मंडलेश्वर निर्मला सोनी जी महाराज अहमदाबाद से हमारे बीच हैं। मैं 2 मिनटों में आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि आप समय को कैसे देखती हैं, क्या आपके मन में उद्गार आते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। जिस तरह यहाँ प्रजापति पिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में मैंने देखा निश्चल प्रेम, आत्मीयता और सद्भाव, तो ये यहाँ आके जिस तरह बच्चे बच्ची कहाँ कहाँ से आए, इतना अच्छा सब सीख चुके, तो माता पिता अपने दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं उनको ये संस्कार क्यों नहीं देते? अगर हर घर में इस तरह का संस्कार दिया जाए
तो इस आश्रम जैसा हर घर आश्रम बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माता पिता, हर माता पिता के लिए मेरा कहना उद्देश्य नहीं है, लेकिन माता पिता खुद ही आधुनिक मंत्र तंत्र, उसके बाद जो यंत्र युग आया मोबाइल, उसी में खुद ही लगे रहते हैं। बच्चों को कोई संस्कार नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना या सूर्य पूजन करना या भोग लगा के पूजन करना या माता पिता को प्रणाम करना, वो अब बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं। टाटा बाय बाय, घूमना फिरना, व्याभिचार बढ़ता जा रहा है, घर में ग्रह युद्ध बढ़ता जा रहा है। जब घर में ग्रह युद्ध ठीक नहीं तो विश्व युद्ध कैसे ठीक होगा? जब बच्चों में संस्कार बढ़ेंगे तभी बाहर की भी सारी स्थिति सुधरेगी। बस ओम शांत।
बहुत ही सुंदर विचार, घर में ग्रह युद्ध चल रहा हो तो बाहर युद्ध का होना ये तो स्वाभाविक है। जो अंदर है वही तो बाहर को प्रतीत करता है। विज्ञान भी इसी दृष्टिकोण से बात कहता है कि जो माइक्रोकॉज्म में है वही मैक्रोकॉज्म में है, यानी जो घर में है वही प्रतिबिंब विश्व में है। आज विश्व में अशांति है तो घर में अशांति है, मानव के मन में अशांति है। अब मैं अनुरोध करता हूं, आचार्य श्री परमानंद जी महाराज कटनी से हमारे बीच पधारे हैं, वह भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। समय की क्या पुकार है, क्या आप चीजें देखते हैं?
ओम शांति। सम्मानित मंच, आदरणीय हमारी राजयोगिनी मनोरमा दीदी और इस धार्मिक विंग के आयोजक आदरणीय ब्रह्म कुमार रामनाथ भाई जी और हमारे पूज्य गुरुदेव और मंच में उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, अभी भाई जी ने जो प्रश्न किया कि समय की क्या पुकार है, समय की जो पुकार है वो स्पष्ट दसों दिशाओं से गूंज रही है कि समय क्या चाह रहा है। और समय की एक ही पुकार है कि जो हमने बिगाड़ा है वो समय से सुधार ले, नहीं तो समय स्वयं सुधार लेगा सब कुछ। और परमात्मा भी उस समय के लिए हमें कुछ समय दिया है और वो चाह रहा है कि हम समय से पहले समय का कार्य पूरा कर लें। हमारे भारत में जो ये गुरु परंपरा शुरू हुई है वो गुरु को समय सुधारने के लिए ही रखा गया था, किंतु गुरु एक अपने को परमात्मा समझ करके गुरु लोग आश्रम में बैठ गए और दुनिया में आग लगी है उसकी गुरुओं को, महात्माओं को, संतों को चिंता नहीं है, इसीलिए समय बिगड़ा है। अब तमाम साधु संतों को, हमारे महात्माओं को, गुरुजनों को, कथावाचकों को, अब जब इस संस्था में हम जुड़े तो हमको सबसे पहले जब समय की बात आई तो बताया गया कि 5000 वर्ष की सृष्टि चक्र है। इस पर हमको बहुत कंफ्यूजन हुआ कि हमारे शास्त्रों में 4,32,000 आयु लिखी है समय की, कलयुग की। काफी हमारा व्यंग चला, फिर भी उन्होंने यही कहा कि परमात्मा ने कहा है, तो परमात्मा ने कहा है तो सत्य ही कहा होगा, लेकिन हमें डाउट था। लेकिन इस समय जो है स्पष्ट दिख रहा है कि जो परमात्मा ने कहा है वही सत्य है। 4,32,000 जो लिखा है वो मात्र किताबों में कल्पित है, और जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे तब तक ये भारतवर्ष सो सो ही इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कलयुग कब खत्म हुआ, सतयुग कब आ गया। और इस कार्य को ब्रह्मा कुमारी तो घर घर जाके कर रही हैं, नो डाउट नो प्रॉब्लम, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि जब कोई मरीज इतना बीमार है तो डॉक्टर को घर जाना पड़ेगा, घर बैठे वो वहां से कान फूंक करके इंजेक्शन नहीं लगा सकता। अब इस समय सारी मानवता बीमार है, सारी प्रकृति बीमार है, और हम 4,00,000,000 कल गुरु जी ने हमें बताया कि 4 करोड़ सन्यासी हैं भारत में, और 4 करोड़ सन्यासी यदि हैं तो 140 करोड़ ज्यादा लोग नहीं है इन प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए। लेकिन क्या परिवर्तन नहीं हो पा रहा समय का, क्योंकि हम जो हमारा मूल कर्तव्य है, गुरु एक वैद्य है, वैद्य बनकर के उसको निकलना पड़ेगा और सत्य को बताना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। हम भजन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भारत की जो मानसिक स्थिति है लोगों की गिरती ही जा रही है। कहीं ना कहीं तो हमारे ज्ञान में, हमारे समझाने में बहुत बड़ी चूक है। इस बात को बताना पड़ेगा जनता को। ये काम ब्रह्मा कुमारी कर ही रही है, परमात्मा उससे करा भी रहा है, लेकिन ये समय अब यही मांग कर रहा है कि तमाम 4 करोड़ जो सन्यासी हैं, उन माताओं से आकर ज्ञान ले जो पहली गुरु हैं, और उनसे आकर के समझें कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और ये बात को आग जैसे चारों दिशाओं में फैलाएं, तो समय अपने स्वरूप में अपने आप आ जाएगा।
बहुत ही सुंदर बात।
इसलिए समय का अभाव है, समय की ही बात चल रही है, इसलिए हम समय पर ही अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जब वस्तु स्थितियों को देखा जाता है, वर्तमान में हमारे आसपास क्या नजर आ रहा है ये दिखाई देता है, तो लगता तो है कि हाँ, अब बदलाव जरूरी है। अब रोग किसी एक व्यक्ति को नहीं लगा, वो मरीज अस्पताल नहीं आ रहा, अब तो रोग महामारी बन गया है। घर घर रोगी हैं, हर कोई चिंतित, हर कोई परेशान, हर कोई दुखी। तो तब वैद्य मोबाइल क्लिनिक बना के निकल जाते हैं, गली गलियारों में क्लिनिक खोलने पड़ते हैं। कोरोना के समय पर हमने देखा, सरकार ने सड़क के किनारे भी टीके लगाए, प्रस्तुत था कि महामारी है, रोग सर्वत्र फैला है। अब समय की यही पुकार है कि अब वो परिवर्तन के लिए वैद्य वहां तक पहुंचे जहां तक रोग हैं। हमारे बीच महामंडलेश्वर श्री जगदीश वेदी जी महाराज कोटा से पहुंचे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि कुछ शब्दों में आप प्रस्तुत करें कि आपके मन में क्या विचार आते हैं जब आप समय को देखते हैं।
सद्गुरु नमः। मंच पे विराजमान ब्रह्मा कुमारी भाई रामनाथ जी, ब्रह्मा कुमारी बहन मनोरमा जी, पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, साथ ही सभी संत वृंद, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं कि कितने धैर्य के साथ 25 तारीख से ही आप इस सभागार में बने हुए हैं और धैर्य के साथ में सवाल भी कर रहे हैं, ज्ञान दे भी रहे हैं और ज्ञान ले भी रहे हैं। समय तो समय है, बात समय की है, तो समय तो चलता रहेगा। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि समय हमारे हिसाब से चलने वाला नहीं है, हम समय के साथ चलें। आज जो चल रहा है समाज में, विश्व में, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, अंतरिक्ष की ओर, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध ग्रहों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, पर संस्कारों में हमारा पतन हो गया समाज का। आधुनिकता की होड़ में तो हम आगे बढ़ गए, पूरा संसार में इतने देश हैं, काफी देशों ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन आधुनिकता की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम जो आ रहा है वह संस्कारों का पतन हो गया। और सबसे जो दुर्गति हुई है वो हुई है कि आधुनिकता की होड़ में, पैशन की होड़ में समाज नशे में चला गया, चाहे गुटखे के माध्यम से, चाहे बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, चाहे शराब के माध्यम से, चाहे जुआ, चाहे अहंकार के माध्यम से, नशा है, चला गया। और आज आप देखते हैं सड़क पे चलना तक दुर्लभ हो गया है। अगर बाइक से जा रहे हैं तो कौन हमारे मुंह पे थूक दे हमें पता भी नहीं चलेगा। समस्या विकट हो गई। इस नशे की वजह से चिंतन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, और मनुष्यता पूरी पतन की ओर जा रही है। कैसे निकले इसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सब मिले न मिले इसकी चिंता न करें, इसकी परवाह न करें, अपने से बदलाव लाएं।
स्वयं को देखें, मेरा जीवन कैसा है, मुझे कैसे जीना चाहिए, समय की पुकार क्या है, मैं किसी से कोई उपदेश करूं तो जरूरी नहीं कोई उपदेश को माने, लेकिन मैं उस उपदेश पर चलूं, मेरा जीवन जीऊं, तो हो सकता है कई लोग मुझे देख करके परिवर्तन कर लें। बड़ी बात। दूसरी बात है कि मन बुद्धि और चित्त खराब हो गया। खराब हुआ, खान पान बिगड़ा, जैसा खावे अन्न वैसा हो मन। मन बिगड़ा तो चित्त बिगड़ता चला गया, हम विचार बिगड़े, और जो विचार बिगड़े तो हम उस परमात्मा से दूर हो गए। गीता के माध्यम से मैं श्लोक में नहीं जाकर के उसका भाव सहजता से समझें। दिव्य राजयोग, राजयोग बिल्कुल सारे शास्त्रों में हमारे कहा है, तो हम सीधा सीधा सरलता से कहें कि हम अपनी इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों का निग्रह करें, देखें हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे बैठते हैं, इन सब का निग्रह करें, देखें, कमियों को दूर करें, और इस पूरी प्रकृति को, मनुष्य ही नहीं, इस जगत के जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधों को, सबको परमात्मा का शरीर मानकर इस इंद्रियों को इसकी सेवा में लगा दें, ये श्रेष्ठ कर्म योग हो जाएगा। दूसरा, हम हमारे मन को परमात्मा में लगा दें तो ये भक्ति योग हो जाएगा, और जब हम इतना कर पाएंगे तो हम सहजता से ज्ञान की ओर प्रवेश कर पाएंगे, और जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, अपने आप के स्वरूप को पहचानेंगे, उस परमात्मा के स्वरूप को पहचानेंगे, तो ज्ञान योग के माध्यम से हमारी जो बुद्धि है उसको भी परमात्मा में समर्पित कर दें, तो ये हमारा ज्ञान योग हो जाएगा। और तीनों मिलाकर के जहां तक मैं अनुभव करता हूं कि इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं हो सकता, सुंदर राजयोग बन जाएगा। इंद्रियों को लगाएं सेवा में, बुद्धि को लगाएं, मन को लगाएं परमात्मा में, और बुद्धि को समर्पित कर दें, तो हम श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे। यही बात श्रीमद् भागवत में एक सूत्र कहा गया है कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा सर्व इंद्रिय निग्रहाणी तुष्यतासु जनार्दन। दयया, दया करो, दया होगी तभी प्रेम कर पाओगे। किसी का गला काट रहे हैं और हम तो कहते हम तो प्रेमी हैं, किसी जीव का गला काट रहे हैं बोले हम तो वनस्पति के प्रेमी हैं, नहीं हो सकता। दया सर्वभूतेषु, चीटी से लगा करके ब्रह्मा तक सब जीवों पर दया करें, जो भी करें मन से करें, पवित्रता के साथ करें, सद्भावनाओं के साथ करें, और जो मिला है, जो प्राप्त है, उसको पर्याप्त समझकर संतुष्ट हो जाएं, सभी इंद्रियों का निग्रह करके अपने आप को ठीक करें, तो तुष्यतासु जनार्दने वो परमात्मा अंतर में प्रकट हो जाएगा, अंतर में प्रकट हो जाएगा। यह समय की पुकार है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी स्पष्टता से आपने राजयोग क्या है ये भी बताया, और ये भी देखा कि संसार में ये निग्रह ही तो नहीं है। आज जब हम बीमारी की बात करते हैं, लोग अक्सर कहते हैं भारत डायबिटीज कैपिटल बन गया है, विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में पाए जाते हैं। और अक्सर मरीज डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं कि शुगर बहुत बढ़ गया है डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि भाई मीठा खाना बंद कर दो, तो मरीज बड़ी दयनीय स्थिति से बताता है छोड़ना तो चाहते हैं मगर छूटता नहीं है। तो इंद्रियों का जो निग्रह है, जो बात आपने कही वो आवश्यक है। अब ये समय की पुकार है कि स्वयं का स्वयं पर शासन हो, इंद्रियों पर निग्रह हो। रामनाथ भाई जी हमारे बीच हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप समय को कैसे देखते हैं, क्या समय की पुकार आप महसूस करते हैं।
ओम शांति। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का मैं सम्मान करता हूं, और सारा विश्व आज कहता है, एक शब्द बोलता है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। हमारी पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता का नाम ही नहीं है। अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो क्या है? भौतिकता है। जहां भौतिकता है वहां ये सारी समस्या अवश्य होनी चाहिए और होंगी ही, क्योंकि ये नेचर है। आध्यात्मिक ऐसी शक्ति है, उसके अंदर दैवी गुण है, दिव्यता है, स्वच्छता है। अगर ये नहीं है तो क्या है? आप भी जानते हो। तो ये होगा, अगर इसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं, हमने अपने जीवन में देखा, खास दूसरों के बाद तो बाद में, जब तक हमारे जो शरीर को मुझे स्वस्थ रखना है तो खान पान पर ध्यान चाहिए, स्वच्छता चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, व्यायाम चाहिए। स्वस्थ शरीर को रखने के लिए स्वस्थ रखने के व्यायाम चाहिए। ऐसे ही आत्मा को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हो, उदाहरण कार को हम रोज साफ करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ड्राइवर को पेट्रोल नहीं पिलाते हैं, ड्राइवर अलग है। ये आज सारे विश्व के अंदर ये अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं कौन, मैं मना शरीर ही समझ के चल रहे हैं। जब तक ये स्मृति या भान है तब तक ये होगा। अगर आप गीता में एक ही श्लोक उठाओ, एक ही शब्द में कहा, अगर ये सारे मोह माया से मुक्त होना चाहते हो, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति चाहिए, स्मृति माना याद, मैं कौन, ये शरीर नहीं, ये मांस हड्डियों से बना हुआ पुतला नहीं मैं। हां ये है, कार चाहिए, कार में ड्राइवर बैठा है, ये अगर स्मृति में है, अपने आप उसकी दृष्टि, बोल, कर्म स्वच्छ होंगे। अगर कर्म, बोल, आचरण स्वच्छ है तो वहां सत्यता भी है, वहां शांति भी है, वहां जीवन में कर्मेशु कौशलम का, उसके कर्म आचरण बोल स्वतः ही स्वच्छ दिव्य होगा। अगर ये नहीं, आध्यात्मिक अधिक ज्ञान नहीं है, आप कितना भी भौतिकवाद में बहुत कुछ करते रहो, तरक्की किया, चंद्रमा तक गए हम, साइंस ने बहुत कुछ किया, आप आज मैं यहां बैठे हुए एक मिनट के अंदर अमेरिका पहुंच सकता हूं, लेकिन एक मिनट में यहां से ब्रह्मांड में पहुंच नहीं सकते हैं। तो वो काम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो आकर के ये काम कर रहा है। इसको कहते हैं साइंस की शक्ति और साधना की, साइलेंस की शक्ति, ये दो अलग अलग शक्तियां हैं। जितने हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति, उसको और एक भाषा में मेडिटेशन कहा, ध्यान कहा, स्मरण कहा, ये भाषा है, इसको समझकर अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, 24 घंटे के अंदर 5 मिनट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर इतना भी किया हम अपने जीवन में, संसार में थोड़ा 1%, एकदम 100% नहीं, परिवर्तन देख सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है।
ये बात स्पष्ट होती है कि हम सभी देख रहे हैं, मंच पर जितने हमारे महानुभावों ने अपने वक्तव्य रखे, सबकी बात ये स्पष्ट है कि हम एक ऐसे समय पर हैं जब ये समय हमसे परिवर्तन मांगता है। आज सभा में जो लोग बैठे हैं, आप काफी देर से सुन रहे हैं, तो हम आपकी भी राय लेना चाहेंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, आज विश्व में, समाज में, देश में, परिवार में अपने अंदर बदलाव की आवश्यकता है, वो हाथ खड़ा करें। बदलाव की आवश्यकता है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, मेरे पास लगभग आधे घंटे का समय है और मंच पे इतने सारे विभूति बैठे हैं, उनसे मैं कुछ प्रश्न तो जरूर करूंगा, हर एक से अलग प्रश्न करने की कोशिश करूंगा। अगर सभा में आप कोई साथी हैं जो कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो किसी कागज पर लिखकर आप मंच तक पहुंचा सकते हैं, मैं लगभग दो तीन प्रश्नों को, आपके प्रश्नों को इस पैनल डिस्कशन में शामिल करने की कोशिश करूंगा। आप मोटे अक्षरों में लिखें, छोटा प्रश्न लिखें, ताकि स्पष्टता से और कम समय में मुक्त ले सकें। आपकी भागीदारी का स्वागत रहेगा। मैं आचार्य श्रीमन महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद जी से ये पूछना चाहूंगा। स्वामी जी, परिवर्तन सभी चाहते हैं, कैसे होगा परिवर्तन, कौन लाएगा परिवर्तन? मैंने ये बात सुनी कि लगभग 4 करोड़ सन्यासी जन हैं। अब ये बात तो बहुत सुंदर प्रेरणा की बात है, मगर जो गृहस्थ में हैं, जो युवा हैं, जो बूढ़े हैं, जो कामकाजी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो बस जिंदगी जी रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, कमाई करना है, जो मिल रहा है वो खाना है, कोई ये सोच ही नहीं रहा। तो परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, परिवर्तन का आधार क्या है?
ओम शांति। तो ये बात है, अभी जो काम कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी है जहां भी कुछ काम कर रहे, तनाव है, चैन से बैठता नहीं। पहले एक तो काम कर रहे जो एक मिनट ही हो, दो मिनट ही हो, पांच मिनट ही हो, 10 मिनट ही हो, इससे बढ़कर मौन से बैठे, ये देखना जो काम करते हैं, बिल्कुल हटा देते बाहर का दुनिया से, निचोड़ के कछुआ जैसे अपने को निचोड़ के अपने ओर से भाग जाते हैं परमात्मा की खोज में, जो एक मिनट से शुरुआत करते हैं, तो जगह जगह में, हर कोने कोने में विश्व में जब बैठा जाए मौन होकर, ये काम तो कर रहे ईश्वरीय विश्वविद्यालय राज्य ईश्वर विश्वविद्यालय कर रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमार में, मैं देख रहे कई जगह जगह में मेडिटेशन, जगह जगह में बैठे है, ये नहीं बाकी जगह में नहीं, लेकिन ये जरूरी है कम से कम बैठना। और मैं महसूस किया सचमुच, आप बैठ जाइए, देखिए 5 मिनट बैठ जाए, देखिए आप पूरा शांत हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, ये सचमुच है। आप करके भी देखिए, जैसे तो भैया जी ने करके दिखाया, आप करके देखिए, जब चैन से नहीं बैठते है तो कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, तृतीया की बात है, तृतया मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृत युगे, द्वापर युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कृत युगे। ज्ञान के प्रभाव थे सत्य में, और मंत्र के प्रभाव था तृतया में, मंत्र का प्रभाव इतना डाला जाता, और कलि युग में नहीं, द्वापर में युद्ध शक्ति था, और कलि युग में संघ शक्ति। ये जो कलि युग है, जब तक हम संघबद्ध होकर न करें, बदलाव अकेला नहीं हो सकता। मान लीजिए उदाहरण, इस टेबल है, टीप है, अकेला मैं नहीं उठा सकता, हम यहां जितने मंच पर बैठे हैं, हाथ लगाए तो फूल जैसे उठ जाएगी एकदम। और एक बात है, तो इसे किसे करेंगे, ना हमारा ध्येय क्या रहेगा, ना परोपकार आय फलंत वृक्षा, हम क्या कर रहे हैं, परोपकार आय फलंत वृक्षा, परोपकार आय दुहंति गाव, परोपकार आय बहंती नद्या, परोपकार इदम शरीरम। हम निश्चित सोचे नहीं, भूल गई, जब पर जब दूसरे के उपकार के लिए पेड़ ने फल देते, फूल देते और समावित ऑक्सीजन देते, सबसे बड़ी बात जैसे वजह हम जीवित रहे जीव, और नदियों ने प्रभावित हो रहे जगत के लिए, सबके उपकार के लिए, गाय ने दूध दान देते, हमारा इस शरीर जगत की हित के लिए है, शुद्ध विचार के लिए। भाई जी एक थोड़ा सा 2 मिनट स्नान कर देता हूं, तो कैसे कैसे इसको हम करें, इस शरीर बैठना नहीं, बाकी ओर से दौड़ना नहीं, मैंने क्या बोला, हित के लिए है, मौन रहने के लिए, कैसे ना, 7 प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन लाइफ में, जो भैया जी पूछे, तो मैं प्रिंसिपल ह्यूमन लाइफ का जो बता रहता हूं, 7 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इन्फिनिटी, मैं असीम नहीं, ससीम से असीम हूं, उनका कोई बता नहीं सकता, जैसे यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ गिविंग रिसीविंग एंड बैलेंसिंग, कुछ देना चाहता हूं कुछ लेना भी चाहता हूं, दोनों के बीच में बैलेंस रखना, समत्तम जगोचते, गिविंग रिसीविंग एंड बैलेंसिंग, लॉ ऑफ कर्म, अपना कर्म क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं पहले तो बात कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां तक जाऊंगा, अब बीच में क्या कर्म है, क्या करना है मेरे को, और लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, मेरा इंटेंशन उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, ये भी चाहिए जरूरी है। हम बदलाव लाएंगे ऐसे बोलने से नहीं होगा, अब प्रैक्टिकल भी करानी चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, कुछ सलाह देना चाहता हूं। लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर और लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, हम आज क्या कर रहे हैं, व्यापारी भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, बाकी काम भी लगे हैं, बच्चे की देखभाल में है, बाकी में है, एक एक आदमी 10-12 में, 5-6 नहीं 10-12 की काम में खोज में है, तनाव नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, बीमार नहीं पकड़ेगा, तो लीस्ट एफर्ट हमको करना है, कहां कौन सी काम करना, कौन सी दिशा में चलना, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। और छठा लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ये नहीं होता, डिटैचमेंट का मतलब क्या है, स्विशेषम प्रजगचित स्वरूपानुकार इंद्रियाण सत्याहार जोगों में बोला जाता है, इंद्रिय से निपटना, डिटैचमेंट मतलब हम इसको छोड़ के किससे अटैचमेंट होना, डिटैचमेंट का मतलब उन्हें परिवार छोड़ना, समाज को छोड़ देना, इससे नकारात्मक से डिटैचमेंट, सकारात्मक से अटैचमेंट, ये है लव। और आखिर चीज जो है लव ऑफ धर्म 7, ये हमारा धर्म क्या है, हम जो है मैं हूं जो बोल रहे, हमारा धर्म क्या है, सभी तो बोलते हैं सभी ये 3 दिन सत्र में, इतनी भी बड़े बड़े महानुभव है, धर्म क्या है, सब बोलेंगे धारा इति धर्म, नहीं कौन सी धर्म है, क्या करना, ह्यूमैनिटी जो मानव धर्म है, ह्यूमन का धर्म क्या है, वही दिशा में चलना, कई ये आंसर बोल चुके हैं ये राजदीदी और रुजैया ने, ये बात बोल चुके हैं यहां, मैं तो आभार व्यक्त करता हूं, ये धर्म ये है वो उनकी खोज में और लाके उनसे लाके और बांटना, तो इसीलिए तो बोल रहे परोपकार करने के लिए, तो मन में है तो परोपकार का तब तो लगाए, ये 7 प्रिंसिपल को व्याख्या किया जाए, मैं तो कम से कम समय बोला, इसको जिंदगी में लगा जाए तो बदलाव आ जाएगा, यही मेरा सुझाव विचार।
बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात, मैं समझता हूं महामंडलेश्वर श्री जगदीश वेदी जी ने ये बात कही, रामनाथ भाई जी ने ये बात कही, और आपने उस बात को ऊपर उठाया कि कैसे आज इंद्रियों पर शासन करना, इंद्रिय निग्रह करना, रहते हुए संसार में वो जो डिटैचमेंट लाना, और साथ साथ मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है उस पर फोकस ले आना, स्व का परिवर्तन करना, वो विश्व के परिवर्तन का आधार है। मैं मनोरमा दीदी जी से ये बात पूछना चाहता हूं, आप ब्रह्मा कुमारी संगठन में इतने दशकों से इस कार्य को देखती रही हैं, आज लाखों लोग इस संगठन से जुड़े हैं, आज ये एक विश्वव्यापक सत्य है कि लाखों लोगों के जीवन में जो गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता सच्चरित्रता को धारण कर रहे हैं, लाखों लोग अध्यात्म के इस मार्ग पर अग्रसर है, लाखों लोग हर प्रकार के नशे से मुक्त है, ब्रह्मा कुमारी परिवार में कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट मांसाहार शराब का सेवन नहीं करता, सात्विक जीवन शैली, लोग सोचते हैं कि इसी दुनिया में कोई ऐसा रहना संभव है, लोग कह देते हैं अरे नहीं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो बहुत त्याग करना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, ये भी लोग कहते हैं, क्या जीवन में रहते हुए जैसे महामंडलेश्वर जी ने ये बात कही अभी कि डिटैचमेंट, यहां रहते हुए सब कुछ संभव है,
बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है, डिटैचमेंट करते आए हम, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, और आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में ये कैसे संभव है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमें शिक्षाएं मिली उस परम पिता परमात्मा से, तो उन शिक्षाओं में बाबा ने हमें सिखाया छोड़ना कुछ नहीं है। तुम जिस संसार में जहां खड़े हो, चाहे पद में, चाहे पोजीशन में, चाहे गृहस्थ में, तुमको मंजिल समन्वय करना है। इतने ज्यादा भौतिक न हो जाओ कि रात दिन पैसे ही पैसा नजर आए, इतने ज्यादा पलायनवादी मत हो जाओ कि तुम जंगल में जाके बैठ जाओ, दायित्व विहीन हो जाओ। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बच्चे रो रहे हैं और हम बाहर जाके बैठ गए, वो भी नहीं करो। लेकिन संसार में जहां खड़े हो वहां के दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुछ समय निकालो, मंजिल समन्वय करो भौतिकता और आध्यात्म का। हम छुड़ाते नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं करिए, आप गृहस्थ संभाल रहे हैं, फुलवारी आपने लगाई तो आप उसको पल्लवित कीजिए, छोड़िए नहीं, उसको ले जाइए। लेकिन संस्कार विहीन पशु भी समाना, वो नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसे वो आईना दिखाते हैं जो हमें भगवान ने दिखाया कि डिजायर क्या है, डिजर्व क्या करते हैं। हम बात करते हैं स्वर्णिम युग की, कहते हैं कि सतयुग था, कहते हैं कि सतयुग होगा, लेकिन होगा कैसे? डिजायर है, डिजर्व करते हैं। अगर हम संस्कार विहीन रहेंगे तो चाहते हुए भी वहां नहीं पहुंचेंगे। अगर हम विकृतियों ने और हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने जो हमें यम नियम संयम सिखाए, कुछ और तो नहीं है ना। अभी स्वामी जी ने भी कहा तो डिटेच हमें विकृतियों से होना। अभी आप कह रहे थे कि अगर हम नहीं होंगे ना तो ये सट जो है ना, सट विकार हमें खा जाएंगे। पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं। हम वजू करने के लिए यूं भी कर सकते हैं, तो हम नमन करने के लिए सामने भी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जब हम मूल धारा की ओर जाते हैं, जैसे अभी परोपकार की बात की हमारे स्वामी जी ने, दया की बात की, दया धर्म का मूल है, परोपकार हमारा कर्म है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन, रामनाथ जी ने कहा, तो जो चीजें यथार्थ की ओर ले जा रही हैं, जब उन्हीं जीवन में हम यथार्थ रूप में धारण करते हैं तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, समन्वय करेंगे। और समन्वय करके समय को भी समन्वित करेंगे। जो केवल अगर हमने खाना पीना सोना मैथुन मना बच्चों को जन्म देना अगर इतने किया तो ये तो पशु भी करता है, लेकिन नहीं, हम मानव परमात्मा की रचना के श्रेष्ठतम सुमन है। तो हम अपने आप को उस श्रेष्ठ स्वरूप में अमृत पुत्र के रूप में जब महसूस करते हैं तो हमारा मार्गांतरीकरण हो जाता है, हम दिवत्व की ओर बढ़ते हैं। और जब हम ये जानते हैं कि भगवान हमें देवत्व की ओर ले जा रहा है, एक छोटी सी बात कहती हूँ, बरेली में जब ट्रेन जाती ऊपर काठमांडू की ओर तो दो इंजन मना लग जाते कहीं से, है ना, वो अकेला इंजन नहीं खींच पाता। तो एक आत्मबल होता है, एक परमात्मा बल होता है। जब हमारा आत्मबल, तो हम जितने बैठे सब में आत्मबल है, सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अकेले से मान लीजिए कि नहीं होता तो परमात्मा बल, दो इंजन लगा ले, मेडिटेशन और क्या है। तो जब हम दो इंजन लगा लेंगे तो निश्चित गाड़ी सरल और सहज चली जाएगी। और हम मंजिल समन्वय करके, समय को समन्वित करके परमात्मा के साथ अपने आप को जब जोड़ेंगे, इसी में से समय निकालेंगे, 12 घंटे से 14 नहीं होंगे, लेकिन योगी के जीवन के घंटे 14 हो जाते हैं। वो जब अमृत वेले उठ जाता है और 3 बजे से साधना में बैठ जाता है तो 2 घंटे अनायास बढ़ जाते हैं उसकी जिंदगी के, और ये 2 घंटे सारा दिन उसकी विल पावर को स्ट्रांग करते हैं। ये जो आपने कहा ना 9 लाख लोग, इन्हें कुछ मिला है, और इन्हें मिली है योग साधना से विल पावर। सच को सच कहने की दम रखते हैं हम, हौसला कहने को कम रखते हैं हम। हम अकेले ही नहीं करते विकास, आपको भी अपने संग रखते हैं हम, तो डिजायर के साथ डिजर्व भी करें। तो उस पद्धति पे हम चलते भी हैं और चलाते भी हैं, इसलिए लाखों लोग जुड़े हैं।
बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये परमात्मा शक्ति आत्मबल जहां कमजोर महसूस हो तो वहां उस प्रभु परमेश्वर की शक्ति काम कराती है और उससे सब कुछ संभव है। समय को देखते हुए मैं ऑडियंस के कुछ प्रश्नों की ओर रुख करना चाहता हूं। ये प्रश्न युवाओं से संबंधित हैं, तो मैं ये प्रश्न आचार्य श्री परमानंद जी महाराज कटनी से हमारे बीच पहुंचे हैं उनसे पूछना चाहता हूं। युवा दिशाहीन है, समाज में राजनीति में अराजकता है, धर्म में वैमनस्य है, प्रकृति को विकृत स्वरूप में लेकर आए हैं हम, ये भी हम देखते हैं। क्या इस स्थिति में सुधार संभव है? है तो कैसे?
जी, बहुत अच्छा प्रश्न जिन्होंने भी किया है कि आज सब तरफ से जो है राजनीति हो या धर्म हो, हमारा सब जगह जो है द्वैत है, असमंजस की स्थिति है। इससे युवा बहुत ज्यादा भ्रमित है। जो बुजुर्ग हैं वो तो पुरानी परंपराओं को लेकर के किसी तरह चल रहे हैं, लेकिन जो आज का युवा वर्ग है वो बुद्धिमान है, वो देख रहा है दुनिया को, उसको बरगलाया नहीं जा सकता। उसको आप मीठी मीठी बातें सुना के, कथा कहानी भागवत रामचरितमानस, उसको आप पागल नहीं बना सकते। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है जिन्होंने भी किया है कि इसको सुधारा जा सकता है कि नहीं। जरूर सुधारा जा सकता है। इसके लिए हमें स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें कौन क्या कह रहा है इस पर चिंतन ना करके सत्य क्या है। सत्य है हमारी श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान ने अर्जुन को प्योर सत्य बात बताई है दूसरे अध्याय में। और हम युवाओं से यही कहेंगे कि यदि आप इसको आध्यात्म के नजरिए से समझना चाहेंगे तो कोई इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना मत है। शास्त्रों में जो लिखा है और जो प्रैक्टिकल जीवन में यहाँ घट रहा है वो कुछ और है, जो लिखा था वो कुछ और है। वो जो शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो हमको एक दिशा दिया है, अपने बौद्धिक स्तर पर हमको एक मार्ग बताया है, लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशन है पूरे विश्व की वो एकदम अलग है। और उसी सिचुएशन में से हमें कैसे निकलना है वो ये संस्था इस कार्य में बहुत तेजी से लगी हुई है। तो हम युवाओं को यही कहेंगे कि अब समय 5 मिनट का हमको मिला है और 5 मिनट में आप इतना बड़ा सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो कि असंभव है, किंतु हम आपको एक मार्गदर्शन जरूर देंगे इन 5 मिनटों के समय में कि ये कार्य असंभव नहीं है, संभव है। क्योंकि भगवान को, अध्यात्म को इतना कठिन बना दिया है लोगों ने। क्यों कठिन बना दिया है? रामचरितमानस में लोगों ने कह दिया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। अब इस विषय को लेकर के ही जो निकला है अध्यात्म मार्ग में वो पहले ही बैठ गया कि ये एक जन्म में नहीं कई जन्म में मिलेगा, इसलिए हमारे बस का नहीं। गुरु जी आपन तेज समारोह आप है, इसलिए अध्यात्म बहुत कठिन विषय बना दिया है लोगों ने। क्या हमारा पिता, हम उसको, उससे मिलने के लिए हमको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे? यदि हमको उससे मिलने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ेंगे तो फिर वो हमारा पिता नहीं, वो हमारा शत्रु है। पिता तो वही जो एक बार हम बुलाएं और वो तुरंत हमारे पास आ जाए। तो ये हमारे आध्यात्मिक जो जगत के कथा वक्ता हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनको ये बताना पड़ेगा लोगों को, सब युवाओं को, कि अध्यात्म बहुत सरल, अत्यंत सरल है। इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सरल है। और अभी हमारे गुरुजनों ने बताया कि स्वयं पर मैं कौन हूं, ये सारे समस्याओं का समाधान, सारी बीमारियों का इलाज, सारे धर्म सत्ता, राज सत्ता और भी जो भी समस्याएं हैं जगत में, सारी समस्याओं का समाधान एक ही ताले के अंदर बंद है, एक ही कमरे में बंद है। वो शब्द है Who am I? और वहीं से दूसरी चीज प्रकट होगी कि यदि आपको मैं पता चल गया तो तू पता चल जाएगा कि मेरा कौन है। इसलिए कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आप लोग डरे नहीं। अध्यात्म केवल गृहस्थियों के लिए ही है, सन्यासियों के पास तो कोई है ही नहीं है, क्या अध्यात्म की जरूरत। समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? पत्नी बच्चे गृहस्थ आश्रम वालों के पास है, बाबा बैरागी लोगों के पास कुछ नहीं है, उनको भगवान का ध्यान करना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है गृहस्थियों के लिए, एक घड़ी आधी में पुण्य आधी। यदि आप 24 घंटे में 24 मिनट भी याद करते हैं तो सन्यासी के 8-10 घंटे के बराबर है आपका योग। इसलिए अध्यात्म को इतना कठिन आप एकदम न समझे। आए आश्रम में, हमारी बहनें निरंतर आपके घर भी पहुंच रही हैं, आप जहां कहेंगे वहां आकर के इस समस्या का समाधान निश्चित ही संभव है। और इसके लिए हमें शास्त्रों की बातों को सुनना है, समझना है, और उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो यहाँ बहने हमारी जो हैं, दीदी लोग हैं, स्पष्ट करके आपको इस चीज से मुक्त कर सकती हैं। ओम शांति।
बहुत ही ये रोचक सी बात है, लोग यही समझते आए हैं कि आध्यात्म का पथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घट की, कि सभी के घट में ये पानी नहीं आएगा, ये संभव नहीं है, ऐसा लोग समझते आए हैं। मगर ये सभी के लिए संभव है, ये परिवर्तन सभी ला सकते हैं। समाज से जुड़ी हुई एक ऐसी ही प्रश्न की बात कर रहे हैं, त्यागी जी महाराज कटनी मध्य प्रदेश से प्रश्न भेजते हैं, समाज में हमारी उपयोगिता कितनी है और कैसे, हमारा आदर्श कौन है यह तय कैसे करें। मैं समझता हूं महामंडलेश्वर कमल किशोर जी से मैं अनुरोध करता हूं, स्वामी जी आप इस पर प्रकाश दें।
अति महत्वपूर्ण बात, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी युवाओं से भी, युवा वो होता है जिसके अंदर कुछ करने की चाह होती है, कुछ बदलने की चाह होती है, आयु से उसका कोई संबंध नहीं होता। आप कहते हैं कि अराजकता है चारों तरफ, अंधेरा है चारों तरफ, तो उजाला अगर कर दिया जाए अंधेरा अपने आप चला जाता है। उजाला करने के लिए ही तो हम यहां पर आए हैं, और यहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है, ये सारी की सारी ब्रह्मा कुमारियां प्रकाशमान दिए हैं जो अंधकार को दूर करने के लिए हैं, इसलिए ये अंधकार दूर होगा ही। बात हुई थी अभी कि युग कैसे बदलेगा, भविष्यवाणियां हैं पिछली देखी है हमने सारी की सारी, 2046 में पक्का युग बदलना ही बदलना है, और सारी की सारी प्रलय होनी ही होनी है, प्रलय के बाद सत्युग आना ही आना है, ये भविष्यवाणी भी आज आपको बता देते हैं। उपयोगिता, हमारी समाज में उपयोगिता है क्या? हम जब समाज का अंग हैं तो हमारी उपयोगिता तो अपने आप हो गई, हमें कोई समाज से अलग कैसे कर सकता है, समाज हमी से तो बनता है। लेकिन 4 करोड़ भगवा वाले जो बैठे हैं ये सारे के सारे दोषी हैं, उनमें मैं भी आता हूं। हम लोग समझा ही नहीं पाए, कहते हैं कि आज मंदिर में कोई आता नहीं है, और हमें वो आजकल अगर वो तबला या ढोलकी भी बजानी पड़ती है या आरती करनी पड़ती है, घंटी बजानी पड़ती है, तो वो मशीन लगानी पड़ती है, मंदिर में कोई आता नहीं, आएगा कैसे? इसका मतलब आपके अंदर शक्ति ही नहीं है खींचने की, समझाने की शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उपयोगी होना पड़ेगा ना। भाषा क्या है हमारी? होता चुनाव है, और चुनाव में क्या कहते हैं अखबार वाले लिखते हैं, मीडिया वाले क्या लिखते हैं, महासंग्राम, क्या वहां लड़ाई हो रही है, महायुद्ध, युद्ध हो रहा है कोई वहां पे? चुना जाना है, एक ने चुना जाना है तो चुनाव लिखो ना उसे। जब भारत और पाकिस्तान का या किसी दूसरे देश से मैच हो रहा होता है तो उस समय भी क्या कहते हैं, भारत ने 4 विकेट से रौंदा, शब्दों का ध्यान, चुनाव देखिए, रौंदा, पीटा, मारा, क्या मारा पीटा, शब्दों का चुनाव ही गलत है। हम लोग क्या करते हैं घरों में,
बच्चे को बोलते हैं, मां बोलती है मेरा तू ये काम करके आ जा, बच्चा बोलता है मैं तो अभी देख रहा हूं मोबाइल देख रहा हूं, मां बोलती है अच्छा तू मेरा काम कर मैं तुझे 20 रुपए दूंगी 50 रुपए दूंगी, घर से ही रिश्वत शुरू, टॉफी दूंगी घर से रिश्वत शुरू। तो अगर बड़ा होकर आदमी रिश्वत लेता है तो कौन सा गुनाह करता है? आप कहते हैं हमारी उपयोगिता क्या है, आप ही की तो उपयोगिता है। और उपयोगिता कैसे हम बना सकते हैं उसको, वो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें परमात्मा के साथ, यानी एक बड़ा प्यारा गीत है यहां बजता है, आपकी संतान है हम आपसे क्या याचना। हम कोई भिखारी हैं, बहन जी ने बताया था ना, हम कोई भिखारी हैं, भीख मांगेंगे जाके, वो भी अपने पिता से हक से मांगेंगे, हे देना पड़ेगा लेके रहेंगे, और वही तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले करते हैं। तो हमारी उपयोगिता अपने आप बढ़ जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं, उपनिषद का श्लोक है, तत एजिति तन नैजिति तद दूरे तदवंती के। लोग कहते परमात्मा को पाए कैसे, कि परमात्मा तत एजिति तन नैजिति, वो है भी और नहीं भी, वो चलता भी है और नहीं भी चलता, वो दूर भी है और पास भी है। अरे वो चलता भी है और नहीं भी चलता, ऐसी कोई चीज हो सकती है? हम यहां पर ट्रेन से आए हैं, ट्रेन के पहिए चले, हम तो नहीं चले ना, लेकिन हम भी तो साथ साथ पहुंचे हैं। इसी तरह से परमात्मा है, वो चलता भी और नहीं भी चलता, वो दूर भी है और पास भी है। कोई चीज दूर है तो पास कैसे हो सकती है? मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं, ये दो गिलास है, मान लीजिए कि दो आदमी है, एक का मुंह इधर का है एक का मुंह इधर है, यानी एक का मुंह उत्तर की तरफ कर दिया जाए और दूसरे का मुंह दक्षिण की तरफ कर दिया जाए, पीठ हो दोनों की पीठ, उन दोनों को एक दूसरे को पता नहीं है और उनको मिलना है आपस में, एक इधर को चल दे एक इधर को चल दे, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएंगे तब सामने खड़े होंगे एक दूसरे के। और अगर आसान तरीका क्या है, एक उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, एक पश्चिम के दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है और दोनों अपनी एड़ियों पे घूम जाए तो एकदम से आमने सामने आ गए, नहीं आ गए? तो परमात्मा दूर कहां है, वो तो पास में ही तो है। हमारी उपयोगिता बहुत है यदि हम परमात्मा को जानते हैं पहचानते हैं, और जान और पहचान तो यहां सिखाई जाती है, हुए माई मैं कौन हूं मेरा स्वरूप क्या है। जब यह सिखा दिया गया कि हमें सब कुछ सिखा दिया गया, तब हम यहां से जाएं, जब ये हमारा फर्ज बनता है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम साधु संतों महंतों का पीठाधीशों का महंतों सभी का कर्तव्य बनता है कि हम जाके लोगों को बताएं कि इस तरह से आपको डीप साइलेंस में कैसे जाना है, आप कौन हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है, एक के साथ एक हो तो 1+1=2 होता है, लेकिन एक के बराबर में एक खड़ा हो तो 11 होते हैं, और 3 खड़े हो जाए तो 111 होते हैं, एक के साथ एक लगाते चले जाए तो कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सामूहिक रूप से ही हम इस समाज में बदलाव ला सकते हैं, और हमें ये बातें यहां से सीख कर जाके वहां बतानी है, और आने वाले समय में और लोगों को प्रेरित करना है कि आप जाके शिक्षा लो, शिक्षा लो, तभी समाज बदलेगा। और 2046 में जब परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन में हम लोग और आप लोग जो बदल चुके हैं वही सतयुग में जाएंगे। ये बहन जी ने भी बताया, भाई साहब ने भी बताया है, वही लोग जाएंगे, आप देख लेना। और बाकी तो विनाश होने ही वाला है, हो रहा है, दिन ब दिन हो रहा है, चरित्र का पतन भी हो रहा है और युद्ध भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, जिस दिन एक एटॉमिक बम गिरेगा हजारों लोग और मरेंगे। नैतिक बल जो यहां सिखाया जाता है, नैतिकता जो सिखाई जाती है, वो नैतिकता अगर हमारे अंदर आ जाए, नैतिक बल, और नैतिक बल के आगे कोई बल नहीं टिकता, तभी हमारी समाज के लिए उपयोगिता है, वरना हम तो बेकार की चीज हो जाएंगे। नैतिक बल की आवश्यकता है, तो नैतिक बल सभी को अपने भीतर लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी सिद्धानंद सरस्वती जी ने कलयुग में संघ के शक्ति की बात कही। उन्होंने कहा कि संगठन का बल, अगर हम एक से एक मिलते जाएं, एक के साथ एक जोड़ने से, वैसे तो हम मैथमेटिक्स में तो 2 समझ लेते हैं, मगर 11 सिखाने का आध्यात्म का अपना गणित है, और इस गणित को अगर हम समझें, हम परिवर्तन कर दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, तो विश्व का परिवर्तन संभव है। और आध्यात्म यही शक्ति दिखाता रहा है। भारत विश्व गुरु उसके आध्यात्म के बल से रहा है। घड़ी तो इशारा करती है, क्योंकि हमने बातचीत शुरू की थी कि समय की पुकार क्या है। अब समय की पुकार रात के 8 बजे समय के साथ साथ अब पेट भी पुकार रहा होगा, ऐसी आशाएं हैं। मगर ये जो चर्चा रही है, इस चर्चा में एक बहुत ही बेहतरीन समझ हम सभी को मिली है कि आध्यात्म जगत, धर्म का जगत मौन नहीं है। वह देख रहा है कि जगत में क्या हो रहा है, और उसके परिवर्तन की पुकार को सुन रहा है, और उस संदेश को अब सिर्फ सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है, स्वयं को बदलना है, और विश्व का परिवर्तन निश्चित है। उस परिवर्तन के हम भी सिर्फ साक्षी में बने, उस परिवर्तन का आधार स्वयं को बनाना है। बहुत ही सुंदर चर्चा और बहुत ही उन्नत विचार और बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं आज इस मंच से हमारे बीच सभी गणमान्यों ने, हमारे वरिष्ठों ने हमारे बीच दिया है। तो सम्मानित मंच के लिए जोरदार तालियां, और उनका अभिनंदन हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।